Here's Broad. And he bowls. That's edged and caught. Call a third slip.
पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, खर्च नहीं कर पा रहे बिकॉज ये हालत उन्होंने अपनी खुद तैयार की है.
वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की हॉकी जो है दोबारा से ऊपर आए.
हमारे पास कश्मीर के भी लोग हैं, उसमें हमारे पास अफगानिस्तान के भी लोग हैं.
पहले जलजला, फिर बारिश और अब धड़ाधड़ विकटें. इंटरनेशनल हॉकी की सदारत भारत के पास, लेकिन क्या पाक भारत हॉकी को भी इससे फायदा होगा? और कश्मीरी क्रिकेटर्स भी पिशावर जलमी के मद्दा. खेल के मैदान से अब्दुल रशीद शकूर का सलाम. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब से न्यूजीलैंड पहुंची थी, उसे क्रिकेट खेलने को नहीं मिल सकी थी. पहले जलजला आया, फिर बारिश और खराब मौसम चार रोजा मैच को ले उड़ा. रही सही कसर पहले टेस्ट मैच के पहले दिन बारिश ने पूरी कर दी, लेकिन जब दूसरे दिन का खेल हुआ तो पाकिस्तानी बैट्समैनों के तमाम कसबल हवा में और विकेट पर मूव होती हुई गेंदों पर निकल गए और पूरी टीम सिर्फ 133 रन बनाकर आउट हो गई. हरारे में पैदा होने वाले कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंडर 19 क्रिकेट बावे की तरफ से खेली है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की इब्तिदा न्यूजीलैंड की तरफ से. और आज अपने पहले ही टेस्ट के पहले दिन वो पाकिस्तान के 6 बैट्समैनों को आउट करने में कामयाब हो गए, जो न्यूजीलैंड के किसी भी बॉलर की अपने पहले टेस्ट मैच में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी भी है. सोने पे सुहागा एक और खिलाड़ी जिनका ये पहला टेस्ट मैच है, जीत रवाल. उन्होंने पहले उम्दा फील्डिंग करते हुए 3 कैचेस लिए और फिर नाकाबले शिकस्त निफ सेंचुरी बनाकर वो पाकिस्तानी बॉलर्स को मजीद किसी कामयाबी से बाज रखने में कामयाब हो गए, जिन्होंने कैन विलियमसन समेत न्यूजीलैंड की 3 विकेटें जल्द हासिल कर ली थीं.
Here's Broad and he bowls. That's edged and caught. Call a third slip. That's a tremendous breakthrough. Lovely catch from Stokes.
भारत और इंग्लैंड भी विशाखापट्टनम में दूसरे टेस्ट मैच में मध्य मुकाबिल हैं और आज इस मैच का दूसरा दिन था. पहले टेस्ट में भारत को मुमकिन शिकस्त से बचाने वाले कप्तान विराट कोहली इस दूसरे टेस्ट मैच में भी जमकर खेले और उन्होंने अपने 50वें टेस्ट को 167 रन की शानदार इनिंग से यादगार बना दिया. दूसरी जानेब BCCI और जज साहिबान पर मुश्तमिल अदालती कमेटियों का मामला अभी तक अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच सका है. लोधा कमेटी की सिफारिशात पर BCCI ने अभी तक अमल दरामद नहीं किया है, बल्कि एक से ज़ायद मर्तबा उसने ये तासुर देने की कोशिश की कि उसके फंड्स रोके जाने से उसकी न्यूजीलैंड और अब इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज मंसूख हो सकती थी. हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी. हाँ, रियासती एसोसिएशंस के पैसे रोके जाने के नतीजे में भारत की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी ज्यादा मुतासिर हुए हैं. दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता.
इन दिनों हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को नाफिज करने को लेकर अब मेजबान टेस्ट सेंटर जरूरी खर्चा ही कर सकता है, लेकिन अब इसका असर घरेलू क्रिकेट पर नजर आने लगा है. राजस्थान की रणजी टीम जब कर्नाटक से मैच खेलने विशाखापट्टनम पहुंची तो टीम को एयरपोर्ट पर रोका गया. टीम के कप्तान पंकज सिंह ने अपनी जेब से 1,00,000 रुपए से ज्यादा का खर्च खुद अदा किया. क्रिकेटरों का TADA बंद है. लोढ़ा कमेटी की इजाजत के बिना BCCI और उससे जुड़ी तमाम क्रिकेट एसोसिएशन एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती. ऐसी हालत को लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली कहते हैं,
जरूर नजर आ रहा है. अगर आप देखें अभी जो है हालत पहले वाली नहीं है. अपने दायरे में रह के खर्च कीजिए. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जो पहले से पैसे मिले उन्होंने क्या किए हैं? वही हाल हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का है, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का भी यही हाल है. वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये हालत उन्होंने अपनी खुद तैयार की है. इसके लिए आप लोधा पैनल को या BCCI को क्या ब्लेम करेंगे? आपका विजन था नहीं. आप सीजन की शुरुआत में आपको मालूम था कि कितना खर्चा होगा, आपके आपको इंतजाम करके रखना चाहिए था. पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा दोष खिलाड़ियों का है. वो तो जाके खेलेंगे, उनके अलाउंसेस अगर अभी नहीं मिल रहे हैं तो बाद में मिलेंगे.
उधर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन भी जैसे तैसे अपनी हुकूमत चलाना और बचाए रखना चाहती है. अगर दिल्ली की बात की जाए तो उसने जस्टिस मुदगिल कमेटी के सिफारिशों पर बनाए गए सीनियर क्रिकेट टीम के सिलेक्टर अतुल वासन और जूनियर टीम के सिलेक्टर मनिंदर सिंह को ही हटा दिया, जबकि दोनों हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं. खुद अतुल वासन कहते हैं,
मुडगल साहब ने जो कमिटीज बनाई थी हमने सोचा था चलिए काम करेंगे, पर अब उनकी आपस की तकरार जो है और अपने जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं और हमें जिस कमेटी ने अपॉइंट किया था उस कमेटी ने तो हटाया नहीं है. तो कमेटी कौन सी है जिसके पास ताकत है हमें डालने की और हमें निकालने की, इसको लेके हम भी कंफ्यूज हैं.
क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली भी इसे बेहद खराब मानते हुए कहते हैं,
जिनके साथ आपने एक्शन लिया वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, भारत के लिए खेले हैं और उनकी रिप्लेसमेंट तो देखिए आप जो उन्होंने खिलाड़ी रखे हैं जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, मनिंदर सिंह को हटा के आप किसी एक ऐसे प्लेयर को ला रहे हैं जो कोई पहचान ही नहीं है दिल्ली क्रिकेट में।
हालांकि दिल्ली स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी गलती सही कर ली है और अतुल वासन और मनिंदर सिंह वापस सिलेक्टर बन गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि चाहे BCCI हो या उससे जुड़ी तमाम क्रिकेट एसोसिएशन, ये आसानी से मानने वाली नहीं है।
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH ने गुज़िश्ता दिनों भारत से ताल्लुक रखने वाले नरिंदर बटरा को अपना नया सदर मुंतखब कर लिया। मैंने इस सिलसिले में अपने दौर के बेहतरीन खिलाड़ी शहबाज अहमद को जहमत दी जो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं। मेरा शहबाज अहमद से पहला सवाल था कि पाकिस्तान और भारत के कशीदा ताल्लुकात के सबब दोनों मुल्कों के दरमियान हॉकी रवाबित भी मुनक़ता हैं, ऐसे में नरिंदर बटरा का इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सदर बनना क्या दोनों मुल्कों के दरमियान हॉकी रवाबित की बहाली में मददगार साबित हो सकेगा?
मेरी और प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर की भी नरेंद्र बटरा से मीटिंग हुई है इलेक्शन से एक दिन पहले, और हमें वो काफी प्लेजेंट भी लगा है और उसने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिया है लगा है कि वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान की हॉकी को भी सपोर्ट करेंगे और वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की हॉकी जो है दोबारा से ऊपर आए, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान की हॉकी है असल खूबसूरती आपको पता है उसी हॉकी में है।
शहबाज अहमद से मैंने पूछा कि पाक भारत हॉकी न होने से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कितना नुकसान हो रहा है?
इंडिया पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इशू है आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट और मेरा उसमें एक्सपीरियंस भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी बताता चलूं कि मैं खुद भी जब पहली दफा पाकिस्तान की टीम में आया तो मुझे मौका मिला पाकिस्तान इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने का और मैंने 10 मैचेस की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें हिस्सा लिया था। अभी अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक चाहते हैं कि सुपरस्टार पैदा हों तो उसके लिए जरूरी है कि हम दोनों आपस में हॉकी खेलें, क्योंकि फैन फॉलोइंग होगा और पाकिस्तान के लोग और मीडिया जब अपने किसी प्लेयर को हाईलाइट करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को एनकरेज करेगा, अप्रिशिएट करेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और स्टार पैदा होंगे और उससे ये होगा कि हम इंटरनेशनल हॉकी में बेहतर जगह पे आ सकते हैं।
शहबाज अहमद से मेरा आखिरी सवाल FIH में पाकिस्तान की नुमाइंदगी न होने से मुतालिक था कि इससे क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान की हॉकी दुनिया भर से कटकर नहीं रह गई?
ये बात आपकी ठीक है। देखें, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में भी हमारी नुमाइंदगी ना होने के बराबर है, एशियन हॉकी फेडरेशन में भी ऐसा ही है। अगर हमारा कोई नुमाइंदा पुराना इलेक्ट हुआ गया भी है तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर वो 2 साल भी रहा है तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन 2 मिनट के लिए भी पाकिस्तान हॉकी के लिए नहीं रही। आपकी इंटरनेशनली से होनी चाहिए, आपको हर चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। मसला ये है कि हमने जो 10-12 साल में बोया है ना वो ही आज काट रहे हैं।
पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने वाली पिशावर जलमी ने दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में अपनी क्लब टीमें भी तैयार की हैं। इन टीमों का इंतखाब ट्रायल्स के जरिए हुआ और दुबई जलमी के नाम से जो टीम बनी है उसमें भारत के जर इंतजाम कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी मोहसिन मुश्ताक भी शामिल हैं। मैंने पिशावर जलमी के सरबराह जावेद आफरीदी से पूछा कि पिशावर जलमी के बाद अब ये दुनिया भर में क्लब क्रिकेट का सिलसिला, इसका बुनियादी मकसद क्या है?
ग्लोबल जलमी के नाम से हमने एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। ग्लोबल जलमी ये था कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, क्रिकेट क्लब्स हैं, सबसे पहले हमारे क्रिकेट क्लब्स हैं उनको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वहाँ की लोकल क्लब से करवाई जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न जलमी हो गया, US में हमारे पास न्यूयॉर्क जलमी हो गया, लंदन जलमी हो गया, बॉन्न जलमी जो है वो जर्मनी से हो गया, बहरीन जलमी हो गया, कतर जलमी हो गया, तो ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 15 क्लब्स अभी तक ऑल ओवर द ग्लोब हमारे रजिस्टर हो चुके हैं। इन सारे क्लब्स को इकट्ठा किया जाए, ग्लोबल एक वर्ल्ड कप मुनक्कद किया जाए दुबई के अंदर जिसमें हम इन क्लब्स को इन्वाइट करें और इसका एक वर्ल्ड कप होगा दुबई में इंशाल्लाह। ये जितनी भी टीम है ग्लोबली हमारी उसमें हमारे पास इवन इंडिया के भी लोग हैं, उसमें हमारे पास कश्मीर के भी लोग हैं, उसमें हमारे पास अफगानिस्तान के भी लोग हैं। तो पाकिस्तान का मैसेज पीसफुली पहुंचाना उन लोगों तक, उस दुनिया तक, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस मैसेज को किस तरीके से पहुंचाएं।
जावेद आफरीदी से मेरा आखिरी सवाल था कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में जो हालात रहे हैं उनमें क्रिकेट की सरगर्मियां शुरू करना आपके लिए कितना मुश्किल था और अब वहाँ क्या सूरत हाल है?
पिशावर या खैबर पख्तूनख्वा या फाटा के वो हालात जिस पे मैं अगर जाऊं और उनको एक बॉल और या बल्ला दे दूं और उनको कह दूं कि आप आज से क्रिकेट स्टार्ट करें तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। मेरी केस स्टडी जो है वो टोटली डिफरेंट है कराची से मेरी केस स्टडी टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान के और इलाकों से, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो टेररिज्म से हम ट्रॉमाटाइज हो चुके हैं पिछले 30-40 सालों से, हम तो एक डिफरेंट पिक्चर में, यानी वो किसी भी डेवलपमेंट में आप ले लें। तो अगर मैं जाहिरी तौर पे वहाँ पे जा रहा था, टैलेंट हंट लगा रहा था, या वहाँ पे हमारी कोई भी कैंपेन वगैरह ऐसे हो रही थी, तो मेरी केस स्टडी टोटली डिफरेंट थी, वो अनएक्सेप्टेड थी। वहाँ पे कैंसर है, एक डिप्राइव्ड एरिया है वहाँ पे, वो डिप्राइव्ड एरिया की वो कैंसर के हालात में मैं वहाँ पे ये सारी चीजें करने के लिए बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं उस इलाके के लोगों के लिए मैं फिर भी बताऊँ कि पेशावर ज़ल्मी का नाम इतना बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह कमर से मैं इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि लोगों ने इवन वहाँ के इस ब्रांड के तवासुत से अपने कारोबार स्टार्ट किए हैं, ज़ल्मी रेस्टोरेंट स्टार्ट हो गए, ज़ल्मी बसेस सर्विसेज स्टार्ट हो गई, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
जावेद आफरीदी की इसी गुफ्तगू पर अब मुझे इजाजत दीजिए।